ओम शांति। एक युवा सन्यासी किसी जंगल में बैठकर तपस्या करता था और हर दिन उसकी साधना तीव्र होने लगी थी। एकांत में सारे दिन भर बैठकर ध्यान करता था, संसार से बहुत दूर एकांत में। और एक दिन उस जंगल में किसी एक दूर ऋषि के आश्रम में एक ऋषि कन्या रहती थी। उस ऋषि कन्या ने उस तपस्वी को देखा और उसके मन में आया कि मैं इसकी कुछ सेवा करूं। वो अत्यंत कुरूप थी दिखने में, कहानी शास्त्रों में है, और क्योंकि तपस्वी की तपस्या बढ़ रही थी तो हमेशा की तरह दिखाया इंद्र का आसन डोलने लगा है। और इंद्र ऐसा कुछ करता है कि जब वो कन्या पानी भरने जाती है तो उसका चेहरा बदल जाता है और वह अत्यंत रूपवती बन जाती है। और वह कन्या जब उस तपस्वी को देखती है तो उसके मन में आता है इसकी मैं थोड़ी सी सेवा करूं, पर उसे ये भी पता है कि मुझे उसकी तपस्या भंग नहीं करनी है, इसलिए वो स्वयं को छिपा के रखती है, उसके लिए फल रखती है, पानी रखती है और खुद को छिपाए रखती है हमेशा। तपस्वी बीच बीच में आंखें खोलता है, थोड़ा सा खाता है, फिर ध्यान मग्न। कई दिन बीतते हैं और एक दिन जब वो कन्या कुछ फल रख रही होती है तो अचानक तपस्वी की आंख खुलती है और वो उसे देख लेता है और फिर आंख बंद कर लेता है। वो कन्या वहाँ से निकल जाती है और उसका हृदय आत्मग्लानि से भर जाता है। सोचने लगती है शायद मेरी वजह से उसकी तपस्या भंग हो गई है, परंतु अंदर ही अंदर उसे थोड़ी सी खुशी भी होती है कि उसने मुझे देखा तो सही, जिसकी मैं इतने दिनों से सेवा कर रही हूँ, कम से कम एक बार तो मुझे देखे। परंतु आत्मग्लानि का भाव ज़्यादा था क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थी और वो संकल्प करती कि अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, और सुबह होते ही वो हमेशा के लिए चली जाती है। तपस्वी अपने ध्यान में मगन है, तपस्या और उग्र हो रही है और धीरे धीरे भोजन करना छोड़ देता है, धीरे धीरे जल भी छोड़ देता है और केवल तपस्या में रत रहता है। ढेर लग जाता है मिट्टी का शरीर पर, पहाड़ सा बन जाता है और दिखाया इंद्र प्रकट होते हैं। और इंद्र पूछते हैं उसको कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, ऐसी घनघोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, कहो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए? मैं तुम्हें स्वर्ग भी देने को तैयार हूं। तपस्वी आंखें खोलता है, कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए तो फिर इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मोक्ष भी दे सकता हूं, संपूर्ण जन्म मरण के चक्र से मुक्त। वो कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इंद्र और आश्चर्यचकित होता है, ऐसे कौन सी साधना है, क्यों तुम तपस्या कर रहे हो कि तुम्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, फिर तुम्हें चाहिए क्या? बिना कोई कारण के तो तपस्या करता नहीं, तुम क्यों कर रहे हो फिर अब तक? कुछ भी बोलो, तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तपस्वी कहता है वो कन्या कहाँ है? कहानी यहां पूरी हो जाती है। क्या कहता है वो कन्या कहाँ है? वासनाएं सूक्ष्म है, तृष्णाएं मन के अचेतन कोनों में छिपी हुई है। क्या हम करें जिससे ये जीवन तापसी बन जाए, तपस्वी बन जाए। तप अर्थात तपाना, टू हीट जलाना। तीन प्रकार के तप, कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर को तपाना, मन को तपाना, वाणी को तपाना। और तीन प्रकार के तप, सात्विक, राजसिक और मानसिक। सात्विक अर्थात निस्वार्थ भाव से परमात्मा प्राप्ति के लिए किया जाने वाला तप। राजसिक अर्थात जिसमें जबरदस्ती शरीर को पीड़ा दी जाती है। और तामसिक अर्थात जिसमें शारीरिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि शरीर को मिट्टी के अंदर दबा के रखना। दूसरा जो है राजसिक, वो भोजन और शरीर को पीड़ा देने से संबंधित है। तीसरा जो है तामसिक, वो शरीर को किसी मुद्राओं में रखने से संबंधित है। इस ब्राह्मण जीवन में कुमार जीवन जो है वो तपस्वी जीवन है। कुमार जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, निर्बंधन जीवन है। संसार में, संसार के लोग, गृहस्थी जो जीवन जी रहे हैं, उसमें दुख है, पीड़ा है, दर्द है, संबंध है, बंधन है। उसी बंधन में पिसता रहता है व्यक्ति। एक गृहस्थी भक्त भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, बहुत प्रार्थना करता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कहो, मन्नत मांगो। वो कहता है मैं गृहस्थी हूँ, मुझे वापस कुमार बना दो, क्योंकि गृहस्थी में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, कदम कदम पर यातनाएं हैं। पहले ही बहुत अच्छा था, अविवाहित, मुझे फिर से कुमार बना दो। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन अर्थात जन्नत। तप दो प्रकार के हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप अर्थात उपास, बाह्य तप अर्थात ब्रह्मचर्य, बाह्य तप अर्थात निग्रह। बाह्य तप बाहर की क्रियाओं से संबंधित है। एक अभ्यंतर तप है, आंतरिक तप, जो कि आंतरिक साधना है। आज सुबह की साकार मुरली यथार्थ साधना अर्थात शक्तिशाली याद। यथार्थ साधना अर्थात एक बाप से दिल का संबंध। यथार्थ साधना अर्थात जैसे तुम योग में मन बुद्धि शरीर को स्थिर करते हो, वैसे यथार्थ याद अर्थात दिल मन बुद्धि एक के साथ बैठ जाए, एक में लग जाए, यह है यथार्थ साधना। यथार्थ साधना अर्थात याद फरियाद नहीं, तुम्हें साधना करनी है, आराधना नहीं। आज वरदान है ना। तो आज समय हमारे पास बहुत कम है, तो इस जीवन को तपस्वी बनाने के लिए हम सात ऐसी धारणाओं की चर्चा करेंगे। सात अस्त्र, सात शस्त्र, सात बातें, सात मुख्य तेजस्वी धारणाएं। यदि कुमार बनकर भी, कुमार रहकर भी जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बंधन है, तो फिर हमारे में और उनमें क्या भेद, जो कि संसार के दर्द में दुखों में खोए हैं, वासना युक्त जीवन जी रहे हैं। ऐसी सात धारणाएं। सबसे पहले इस जीवन को तपस्वी बनाने के लिए चाहिए संपूर्ण पवित्रता, उसमें भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, परंतु उस पवित्रता के भवन की जो आधारशिला है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का संबंध काम से है। शास्त्रों में 8 बातें काम के संबंधित है। ब्रह्मचर्य अर्थात हर परिस्थिति में, हर समय और हर स्थान में इन 8 बातों का खंडन ना हो। ऑल प्लेसेस, ऑल टाइम, ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में, हर समय और हर स्थान पर। कुमार जीवन की सबसे पहली जो धारणा है वो है अखंड ब्रह्मचर्य। इस देह में जो रस बह रहा है उसका निग्रह। एक माली है जो जिसके पास बहुत बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में असंख्य प्रकार के फूल हैं, इतने सुगंधित हैं कि दूर से ही आकर्षण करते हैं। वो माली महीने भर के बाद सारे फूल तोड़ता है, एकत्र करता है, उनका रस बनाता है, पराग बनाता है और फिर उसको लेके जाके नाली में फेंक देता है। तो क्या उसे बुद्धिमान माली कहेंगे या मूर्ख? इस देह में भी जीवन ऊर्जा बह रही है। यदि नीचे की ओर बहे तो शरीरों को जन्म देगी, परंतु यही ऊर्जा यदि ऊपर बहने लगे, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बहने लगे, तो वही ऊर्जा, वही वीर्य ओज और तेज में रूपांतरित हो जाएगा और ऐसा तेजस्वी पुरुष एक सशक्त बुद्धि का अधिकारी होगा, एक शक्तिशाली स्मृति याददाश्त। सारी ऊर्जा केंद्रित है, एक ओर बह रही है। सारा संसार अधोगामी है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देना है। ऊर्ध्व रेता योगी। ब्रह्मचर्य की 8 बातें शायद सभी ने सुनी है, पढ़ी भी होगी, परंतु फिर भी क्योंकि आज तपस्या का दिन है, उसे केवल हम रिवाइज करा रहे हैं आपके लिए, केवल नाम गिनाकर। विस्तार से आप कहीं और अन्यत्र सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। देखना, दर्शनम, स्पर्श, स्पर्श करना। तीसरा, खेलना। चौथा, प्रशंसा करना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, स्पर्श नहीं करो दृष्टि से और संकल्प से भी इस देह को। देह सांप है, सांप में विष होता है। ब्रह्मचारी आत्माएं जिन्होंने ब्रह्मचर्य को पूरा नहीं समझा है, अपनी तृष्णा को देखकर पूर्ण करते हैं। परंतु यदि देखना ही है देह को, तो वो देखो जो देह है वास्तव में, अस्थि पंजर, हड्डियों और मांस का पिंड मात्र है। इसमें कहां सौंदर्य? बकेट ऑफ यूरिन एंड स्टूल, जो गंदगी विष्टा में है, वही इस देह में भरी है। सारा संसार पागल है। दूसरा, स्पर्श। तीसरा, खेलना। वो खेल व्हाट्सएप का भी हो सकता है, एक मैसेज इधर से और एक मैसेज उधर से। दोष न ब्रह्मा कुमारी का है और न ही ब्रह्मा कुमार उम्र का है, इसलिए खेल खत्म। चौथा, प्रशंसा। मुरलियों में आता है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, ये बहन बहुत मीठी मुरली चलाती है। बाबा कहते हैं, अरे मीठी बहन नहीं, मीठी मुरली है। पांचवा, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स। डर है यदि मोबाइल किसी के हाथ में चला जाए, देख ना ले मैसेजेस। जीवन खुली किताब बना दो जिसमें छिपाने का कुछ ना हो। आज कहा है, इज्जत गवाओगे तो क्या पद पाओगे, सगे हो या लगे, जो सगे होंगे उन्हें गुप्त मदद मिलेगी। गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। युधिष्ठिर को पूछा गया है महाभारत में, यदि तुम्हारी माँ बैठी है और तुम बैठे हो तो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? धर्मराज वो कहता है, आई एम नॉट श्योर। साधना की इसलिए आवश्यकता है। छठवा संकल्प, संकल्प करना समीप जाने का। मन में कल्पना है, सेक्सुअल फैंटसीज। सातवां अध्यावसाय, वास्तव में समीप जाना, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट मीटिंग्स, एकांत में मिलना। आठवां वास्तविक काम क्रिया, हर स्थान पर, हर समय और हर जगह पर आठ चीजों का त्याग अर्थात ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य अर्थात इस पवित्रता के भवन की आधारशिला। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो ब्रह्माचर्य ही है, वो बहुत बड़ा विषय है, उसकी कभी और चर्चा करेंगे। तो सात चीजें जो हमें तपस्वी बनाने में मदद करेगी, सबसे पहली कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। दूसरी संपूर्ण वैराग, सब कुछ देखते हुए भी, ऑफिस में रहते हुए, घर में रहते हुए, कमरे में रहते हुए, इस संसार में ट्रैवलिंग करते हुए, सब कुछ देखते हुए मन में एक वैराग रहे कि ये सब हमारे लिए नहीं है, यहाँ के सुख। दो तीन दिन पहले मुरली चली थी, ये सृष्टि तुम्हारे लिए है ही नहीं। बुद्धि में विचार आना चाहिए, अब हमको बाप के साथ वापस जाना है। शुक्रवार की मुरली, ये सृष्टि तुम्हारे लिए है ही नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म को देखो कैसा दुख है, मृत्यु में देखो कैसा दुख है, जाओ जाकर अस्पताल में देखो उन सारे मरीजों को, व्याधि में कितना दुख है, उन बूढ़े लोगों को देखो जाकर वृद्धाश्रम में, बुढ़ापे में कैसा दुख है। कहाँ है सौंदर्य इस देह में, कहाँ है सौंदर्य वासनाओं में, कहाँ है? दांत गिर जाते, आंखों से दिखता नहीं, क्षीण हो जाता है देह, फिर भी वासना नहीं मरती, वंस मोर की कामना के साथ ही व्यक्ति मरता है। यह है जीवन, यह है सत्य। देखो और जानो और परखो कि हम भी उसी मार्ग पर जाए, उसी भोग के, उसी विलास के, जहां पर कुछ भी हाथ में नहीं आता है, या फिर दोनों ही मार्ग पर चलना है। यह अध्यात्म का मार्ग है, यह भौतिक मार्ग है। भौतिक मार्ग पर भी कदम कदम पर जलना जलना जलना, और अध्यात्म में भी जलना है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में जलना नहीं है, यहां पर भी कदम कदम पर परीक्षाएं हैं, कदम कदम पर माया है, परंतु एक अंतर है, संसार के मार्ग में जलते 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 आखिर में राख रह जाती है, और अध्यात्म के मार्ग में जलते जलते तपते तपते आखिर में हीरा बन जाता है व्यक्ति, जो असंख्य आत्माओं को प्रकाशित करता है। तो किस मार्ग को चुनना है? भौतिक, संसार, विवाह, नरक? आई हेट मैरिजेस, विवेकानंद ने कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स ब्लैक कार्डिज्म। नहीं चाहिए मुझे ये संसार, ये घृणास्पद संसार, दुख है यहां पर, ढोंग है यहां पर। उनके आश्रम का एक सन्यासी, एक गुरु भाई बार बार घर जाता था, कभी माँ से मिलने, कभी इससे मिलने। उन्होंने कहा है, आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर, एक तो इधर एक तो उधर, आउट, या संसार में जाओ या भगवान के मार्ग में आओ, दोनों दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए मन से उस मार्ग को फेंक दो, वो मार्ग हमारा है ही नहीं। मार्ग तपस्या का है, मार्ग कुमार जीवन का है, मार्ग ब्रह्मचर्य का है, मार्ग बाप समान बनने का है, संपूर्ण पवित्रता का है। देह और देह के सुख मिथ्या है। उपन्यास, टीवी, मूवीज जो भ्रम उत्पन्न किया है समाज में सौंदर्य का, तो दूसरी धारणा जो स्वयं में लानी है वो है वैराग। जाओ जाकर शमशान घाट पर खड़े हो, देखो रोज चिताओं को जलते हुए, नहीं बचा पाओगे मन को वैराग से। देखो अग्नि की लपटों को, महात्मा बुद्ध निकल पड़े थे, चन्ना सारथी ने उनको उतारा। चन्ना ने कहा, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, इससे पहले कि अपने बाल काट दो और संन्यास लेने चले जाओ, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, देखो ये भवन, देखो तुम्हारी पत्नी यशोधरा, देखो वो छोटा बच्चा, कितना राजप्रसाद तुमको पुकार रहा है, एक बार तो मुड़कर देखो। महात्मा बुद्ध पीछे मुड़कर देखते और कहते, मुझे केवल और केवल आग की लपटें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। धधकती हुई, धधकता हुआ दावानल है ये संसार, कि हम भी वैसे ही इसमें पिस जाए, वैसे ही इसमें जलकर भस्म हो जाए, जैसे संसारी गृहस्थी, संसार के लोग मर रहे हैं। यह हम इन सब से अलग है, हम बचाने वाले हैं या खुद ही मरने वाले हैं। वैराग हृदय में लाना है। जाओ शमशान घाट पर, जाओ वृद्धाश्रम में, जाओ जाकर चक्कर लगाओ सरकारी अस्पतालों में और देखो टीबी के मरीज, कैंसर के मरीज, डायलिसिस के मरीज, देखो शरीर को। शरीर को देखने का इतना ही रस है, तो जाकर उस शरीर को देखो तो पता चले शरीर में है क्या। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, केवल चमड़ी उखाड़ लो, कहाँ है सौंदर्य। तीसरी धारणा, मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। तपस्वी जीवन के लिए तीसरी धारणा है मौन। बिना मौन के कभी भी कोई भी अध्यात्म का अनुभव नहीं हो सकता। बिना एकांत के ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन हो ही नहीं सकता। स्थूल एकांत की बात हम कर रहे, सूक्ष्म नहीं, जो बाबा कहते एक के अंत में खो जाना, वो तो परिणाम होगा, उसके पहले स्थूल एकांत चाहिए। क्या दिनचर्या में केवल शब्दों का ही कोलाहल है, या मौन भी है, या एकांत भी है और अंतर्मुक्ता है? उस गुफा में बैठकर ही आत्मा परम अनुभव को प्राप्त करती है। भाग रहे भाग रहे, सुबह से लेकर रात तक सेवाएं 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 सेवाएं, सेवाओं का अपना महत्व है, परंतु सेवा तपस्या को हाईजैक न कर ले, किडनैप करके ना चली जाए। व्यक्तिगत जीवन में मौन कम से कम 8 बजे तक, और शाम को जैसे ही सेवाएं, ऑफिस, जॉब सारा पूरा होता है, फिर से मौन। उस मौन में ही दिव्य अनुभव होंगे। ज्ञान क्या है वो समझेगा, नहीं तो केवल वाक्य है, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सगे बच्चे वो है जिनको गुप्त मदद मिलती है, केवल वाक्य है। अंत में तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी किचड़ आपट्टी तुम्हें याद ना आए, आज के मूल्य के वाक्य है सारे, परंतु ये वाक्य केवल वाक्य रह जाएंगे, उसकी गहराई में हम न उतर पाएंगे। यदि मौन नहीं, एकांत नहीं, अंतर्मुक्ता नहीं, टाइम निकालना है इन चीजों के लिए। चौथी धारणा, कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, इंद्रियों को वश में करना। आंखें क्या देखना चाहती है, कान क्या सुनना चाहते है, हाथ किसे स्पर्श करना चाहते हैं, जीभ क्या खाना चाहती है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, 5 रस है, रूप रस, स्पर्श, शब्द और गंध, साइट, टेस्ट, साउंड, टच, स्मेल। पांचों ही आत्मा को अपनी तरफ खींचते और गुलाम बना के रखते हैं। महावाक्य है बाबा के, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। कोई भी रस स्वीकार नहीं है, वो सारे रस जो आत्मा को बंधन में डालते हैं वो स्वीकार नहीं है। तपस्वी जीवन में स्वयं स्वयं के इंद्रियों का मालिक। महात्मा गांधी के जीवन में उल्लेख है, जब वो जेल में थे, जेल में यरवाड़ा या फिर शायद गुजरात के कहीं पर, उनके साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे। महात्मा गांधी का नियम था कि वो 10 बादाम भिगो के सुबह सुबह खाते थे, वही उनका नाश्ता था बस। वल्लभ भाई पटेल को जब ये पता चला तो वल्लभ भाई ने एक दिन पूछा कि आप केवल 10 ही क्यों खाते हो, क्यों ना उसमें आप 5 ऐड कर दो, 15 कर दो तो अच्छा होगा। महात्मा गांधी कहते हैं 5 ज्यादा लो। माँ वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि 5 ज्यादा से क्या फर्क पड़ेगा, आप 15 कर दो। तो महात्मा गांधी कहते हैं आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, 5 से क्या फर्क पड़ता है, 10 की बजाय मैं अभी कल से 5 ही चालू कर देता हूं, एक्स्ट्रा क्यों करना है 5, उससे तो अच्छा है कि 5 से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 5 कम ही कर देता हूं। और उन्होंने 5 कर दिए। डाइट और ब्रह्मचर्य जबरदस्त कनेक्शन है। गरिष्ठ भोजन और राजसिक भोजन करके क्या ब्रह्मचर्य की साधना हो सकती है? जहां देह को, इंद्रियों को शीतल करना है, एक एक इंद्रियों को तपाना है, ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, मुरलियों में आता है खाओ खाऊं पेट में बलाऊं। हमको याद है बचपन में एक मित्र था हमारा, जिसकी माताजी हर साल एक तीर्थ स्थान पर जाती थी, कभी द्वारका जाएगी कभी मथुरा जाएगी, और जहां पर भी जाएगी वहां पर एक चीज छोड़ के आती थी खाने का, कि आज के बाद जलेबी बंद। ऐसे कुछ सालों में उसने एक एक करके बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी। वो भी एक एडिक्शन ही है, शुगर एडिक्शन। कुछ भी खाए तो मीठा चाहिए, एडिक्शन है, लत है। क्या मास्टर सर्वशक्तिवान की यह निशानी है? देखने का रस, सुनने का रस, फिल्मी गीत, मूवीज, क्लिप्स, वीडियोस, ऑडियोस, खाने का रस, स्पर्श का रस। गीता में लिखा है एक जगह, स्पर्श से उत्पन्न जो सुख है अंततोगत्वा दुख में रूपांतरित हो जाएगा। जहां जहां स्पर्श होगा, इंद्रिय इंद्रिय से मिलेगी, वो सारे सुख दुख को जन्म देंगे। अगली धारणा, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स पता है ना, नेचर की ओर करने जाते हैं लोग, 7 दिन तक जूस वगैरह पीते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। उस तरह हम वो खाने का डिटॉक्स की बात नहीं कर रहे, हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं। डिजिटल अर्थात सबको पता है माया ने रूप कैसा बनाया है अपना, डिजिटल। वो बात सुनाने में हमको बहुत अच्छा लगता है, हमेशा हम सुनाते हैं, शायद आपको पता हो। एक व्यक्ति को जैसे ही सोने जाता है, रात में भयानक प्राणी, जानवर, राक्षस, सांप, बिच्छू, टिंडन उसके खटिया के नीचे दिखाई देते हैं हमेशा। बहुत परेशान होता है, इतने डॉक्टरों को मिलता है, कोई भी इसका इलाज नहीं। जैसे ही सोता है रात में यही स्वप्न देखता है, उठता है सुबह दुखी होके जाता है, सब परेशान होते हैं बेचारे को देखकर। एक दिन अचानक उठता है और खुशी खुशी से जाने लगता है, तो गांव वाले पूछते क्या हुआ, वो स्वप्न आज नहीं आया? वो कहते आज नहीं आया। क्यों? तो मेरा एक दूर का भाई आ गया है, उसने मुझे ठीक कर दिया। क्या कर दिया? वो भाई कारपेंटर है, उसने खटिया के 4 जो पहिए पैर है वही काट दिए, क्योंकि स्वप्न में तो वही आता था ना खटिया के नीचे, तो उसने, वो कारपेंटर था तो खटिया के 4 पैर ही काट दिए। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चार है, इसी के नीचे विकार माया काम का बसेरा है। डिजिटल डिटॉक्स, टीवी, रस बहुत है उसमें, वो सीरियल्स, वो सारे कहते हैं हम लोग धार्मिक सीरियल देखते हैं। अरे धार्मिक सीरियल की भूमिका करने वाला वो राम, उसका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? क्या वो विश्व कल्याण के लिए एक्टिंग कर रहा है? स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है उनका? मोबाइल, ये मोबाइल, वो मोबाइल, अपग्रेडेड, ये थोड़ा लेटेस्ट वर्शन है, इसकी भी जबरदस्त माया है कुमार जीवन। मोबाइल, इंटरनेट, क्या एक दिन ऑफलाइन रह सकते हैं? एक दिन, वो भी एडिक्शन ही है। पोस्ट करो हर चीज को, फोटो लो पोस्ट, फोटो लो पोस्ट, रात में पोस्ट करो, सबसे उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा बोलने से पहले कितने आए हैं वो चेक करो, लाइक्स कितने हैं। तपस्वी जीवन अर्थात साधनों का प्रयोग करना, पर उनके अधीन नहीं हो जाना, निर्भर नहीं हो जाना उनके ऊपर, खुद ही देखना है कहीं मैं एडिक्ट तो नहीं हो गया हूं व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीजों का। कितने हुए? पांच। छठवा, परमात्मा प्रेम। तपस्वी जीवन अर्थात जिसमें परमात्मा प्रेम हो। क्या हम करें कि जिससे भगवान के लिए प्यार अभी जितना है वो और बढ़ जाए? और बाबा के सीधे महावाक्य, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। कितना इस मुरली का हम चिंतन, मनन, अध्ययन करते हैं अपने आप को ज्ञान में डुबोना है, प्रभु प्रभु प्रेम में डुबोना है। और अंतिम लास्ट सेवेंथ पॉइंट, निराधार, कोई अवलंबन नहीं। और सबसे बड़ी चीज इसमें है फिनेंशियल, आर्थिक, आर्थिक रीति से हर एक को इंडिपेंडेंट रहना है, भीख नहीं मांगना है किसी के सामने भी। प्रेम दो, केयर दो, अटेंशन दो, बीमार है कोई देखने नहीं आए तो चलेगा, पर भीख नहीं मांगेंगे। ये दो, वो दो, रिस्पेक्ट दो, नाम दो। हमने सेवाएं बहुत की, बहन जी ने हमारा नाम ही नहीं लिया, सबका नाम लिया और हमारा नाम नहीं लिया। वो हमारा नाम ले इसलिए सेवा कर रहे हो? हमें ना नाम चाहिए, ना ही हमें शान चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना ही किसी से इस संसार में एक्सपेक्टेशंस है। हम निराधार है, कोई भी अवलंबन नहीं, शारीरिक अवलंबन नहीं, मानसिक अवलंबन नहीं, भावनात्मक अवलंबन नहीं, सामाजिक अवलंबन नहीं, संपूर्ण इंडिपेंडेंट अर्थात तपस्वी जीवन। समय बहुत कम है हमारे पास आज, इसलिए संक्षिप्त में ये सात बातें हमने आपको बताई है जो कि अपने जीवन में धारण करनी है। सबसे पहली बात बताई, संपूर्ण पवित्रता। दूसरी बात, संपूर्ण वैराग। हफ्ते में एक चक्कर तो लगा सकते हैं हॉस्पिटल का, अगर कोई पूछ ले तो कहा हमारा कोई रिश्तेदार था, बोल देना, देखो साक्षी होकर, केवल देखना। महात्मा बुद्ध के पास यदि कोई संन्यास्त होने आता था, कहते थे 3 मास तक केवल शमशान घाट पर रहो, सुबह से लेकर शाम तक चिताओं को जलते हुए देखो, बस दूसरा और कुछ काम नहीं करना है। वो आग जो है ना वैराग लाती है। तीसरा बताया, मौन, एकांत, अंतर्मुखता। चौथा, कर्मेंद्रिय चीत। वो कौन सी कर्मेंद्रिय जो धोखा देती है, कौन से वो ट्रिगर्स है, व्हाट आर दो सेक्सुअल ट्रिगर्स? वीडियो, पिक्चर, पोस्ट, फोटो, स्टैच्यू, पोस्टर, क्लिप, ऑडियो, कोई व्यक्ति, कोई ड्रेस, कोई वस्तु, कौन से ट्रिगर है, सबको आइडेंटिफाई करो और नष्ट कर दो। अगर घर में ही रखा है कोई ट्रिगर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों के सामने से ही हटा दो तो मन से भी हट जाएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगला डिजिटल डिटॉक्स, कहाँ एडिक्शन हो गया है चेक करो। छठवा परमात्मा प्रेम, उसमें हमने बात कही ज्ञान के, चिंतन की, मनन की, अध्ययन की, चर्चा की। एक अपना ग्रुप बनाओ छोटा सा कुमारों का, और रोज रात में सोने से पहले ज्ञान की चर्चा करो थोड़ी सी, 10 मिनट भी करो तो बहुत है। केवल वरदान डिस्कस करो, पर डिस्कशन बहुत जरूरी है। लास्ट निराधार, चिरा चिरा दुड़ला माझा मीच माझा संग झालो। मराठी में कहावत है कि सारे आधार मेरे टूट गए, मैं ही अपना संग हो गया हूं, किसी संग की मुझे आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।